ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 और अध्याय 22। अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। एष मे प्रापित हस्तानम् दुष्प्रापम् अमरे अपि सावर निरंतर शायम् भवितेन्द्रो मदाश्रयः। एष मे प्रापित स्थानम् दुष्प्रापम् अमरेरपि सावर निरंतर शायम् भवितेन्द्रो मदाश्रयः। एष मे प्रापित स्थानम् दुष्प्रापम् अमरेरपि सावर निरंतर शायम् भवितेन्द्रो मदाश्रयः। शब्दार्थ एषः बलि महाराज मैं मेरे द्वारा प्रापितः प्राप्त किया है स्थानम स्थान दुष्प्रापम प्राप्त करने में अत्यंत कठिन हमारे अपि यहाँ तक कि देवताओं के द्वारा भी सावर्ण्य अंतरश सावर्णी मनु के काल में आयाम ये बलि महाराज भविता होगा इंद्रह स्वर्ग का स्वामी मत आश्रय पूर्णता मेरे संरक्षण में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के तो अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान ने आगे कहा उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वो स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा। तात्पर्य यह भगवान की कृपा है। यहाँ तक कि जब भगवान भक्त के ऐश्वर्य को भी छीनते हैं तो उसे तुरंत ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो सकता। भक्ति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा एक उदाहरण सुदामा विप्र का ऐश्वर्य है। सुदामा विप्र को धन की सख्त तंगी थी किंतु वह विचलित नहीं हुआ और भक्ति के पद से हटा नहीं। अंत में भगवान कृष्ण ने कृपा करके उसे उच्च स्थान प्रदान किया। यहाँ पर मदाश्रय शब्द अत्यंत सार्थक है क्योंकि भगवान बलि महाराज को इंद्र का उच्च पद देना चाहते थे। अतएव स्वभावतः सारे देवता उनसे ईर्ष्यालु हो जाते और उन्हें इस पद से विचलित करने के लिए लड़ाई करते, किंतु भगवान ने बलि महाराज को आश्वासन दिया कि वे उनके आश्रय में मदाश्रय में रहें। भगवान ने आगे कहा उसकी महान सत्शक्ति के कारण मैंने उसे वो स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वो सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं अपने लीलाओं में। स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम का वास्तव में एकांत आश्रय ग्रहण करते हुए गदाधर पंडित के द्वारा श्रवण किया करते थे जगन्नाथपुरी में। और उनके पार्षद स्वरूप दामोदर कहते हैं कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम को समझना है, भागवतम में प्रवेश करना है। जहाँ भागवत पढ़ वैष्णवर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। तो श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए व्यक्ति को भक्त भागवत की आवश्यकता है। भक्त भागवत के हृदय में श्रीमद् भागवतम है और भक्त भागवत के पास श्रीमद् भागवतम की एक प्रकार से चाबी है जिसके द्वारा श्रीमद् भागवतम के रहस्य को जो भगवान के भागवत भक्त हैं वो ओपन करते हैं, या तभी कोई व्यक्ति भागवत में प्रवेश कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये भागवतम सारे विश्व के लिए प्रदान किया। जब प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे तो उनको किसी ने कहा कि आप जा रहे हो अमेरिका? प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं तो भागवतम का दास बनकर श्रीमद् भागवतम के साथ जा रहा हूं। तो इस प्रकार से ये पूरा जो संप्रदाय है ये श्रीमद् भागवतम को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्ति के विशेष अलग अलग अंग है उसमें वो पांच अंगों का प्रमुख रूप से वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन पांचों में से किसी का भी गंभीरता से आश्रय लेता है, संग करता है, तो उनके अल्प संग मात्र से ही व्यक्ति के हृदय में जो सुप्त कृष्ण चेतना है वो जागृत हो सकती है। हाँ, इतना सामर्थ्य है श्रीमद् भागवतम में। इसलिए ये प्रभुपाद का महत्वपूर्ण देन है। क्या महत्वपूर्ण देन है? कि प्रभुपाद ने हर लग्जरी चीज इस्कॉन में प्रदान की है, और उसमें भी लग्जरी वैष्णवा एसोसिएशन प्रभुपाद ने किया है कि जिनके संग में आकर हम श्रीमद् भागवतम को क्या कर सकते हैं, नित्य प्रति श्रवण कर सकते हैं। तो कभी कभी हम भगवत भक्ति में कुछ साल बिताते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें तो मेरे बाया हाथ का खेल है। कीर्तन करना वो मेरे बाया हाथ का खेल है, प्रवचन देना वो मेरे बाया हाथ का खेल है। बहुत ही धीरे धीरे भक्ति के सारे जो ये महत्वपूर्ण अंग है उनको हम बहुत चीपली लेते हैं, साधारण लेते हैं, और भूल जाते हैं कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी भी क्या है, एक विद्यार्थिनी है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम क्या है? विद्यार्थिनी। विद्यार्थिनी मीन्स जो स्टूडेंट है। क्यों? तो आचार्यगण कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से जो भगवान कृष्ण है वो नवनवायमान है। तो कृष्ण जब नवनवायमान है, नित्य प्रति उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य आदि बढ़ता रहता है, तो उनकी सेवा के लिए भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी भी कहती है कि ऐसे नवनवायमान कृष्ण की सेवा करने के लिए भी मैं हमेशा क्या करती हूं, ये मूड धारण करती हूं विद्यार्थिनी या स्टूडेंट का, जिसके द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करती हूं। तो यही भावना एक भक्त के हृदय में होनी चाहिए जो वास्तव में भगवत सेवा में निरंतर लगा हुआ है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ मैं कुकिंग करना जानता हूं, मैं ये सेवाएं जानता हूं, वो करना जानता हूं, तो बल्कि ऐसे करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में केवल 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 अहंकार का ही वर्धन हो सकता है। तो कृष्ण भावना का मतलब क्या है? कि व्यक्ति को निरंतर सीखने का भावना अपने हृदय में धारण करना चाहिए, निरंतर कि हाँ मुझे और सीखना है और समझना है गुरु कृष्ण और वैष्णव की सेवा में अग्रसर होने के लिए। जब ये भावना हमारे हृदय में होगा तो हम कृष्ण भावना में वास्तविक रूप से स्थिर हो सकते हैं और यथोचित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो आजकल तो कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी नहीं बनना चाहता, हर एक व्यक्ति क्या बनना चाहता है? प्रभु, मास्टर, गुरु, आचार्य। हाँ, ये कलियुगा की बहुत बड़ी देन है, देन नहीं है, दुर्भाग्य है। हाँ, जैसे एक बार एक व्यक्ति पिताजी सुबह सुबह उठे और अपने बच्चे की पिटाई कर रहे थे, तो पड़ोसी ने कहा कि अरे सुबह सुबह उठ के इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों? कहते कि कल इसके रिजल्ट हैं और कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इसलिए क्या कर रहा हो, आज ही पिटाई कर रहा हूं, क्योंकि इस पता है मुझे कि ये तो फेल होने वाला है। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि वास्तव में ये जो विद्यार्थी का एटीट्यूड है, स्टूडेंट की भावना है, ये कलियुगा में धीरे धीरे क्या हो रही है, लोप हो रही है। हाँ, तो इसलिए हर एक भक्त को ये समझना चाहिए कि मुझे गंभीरता से इस भावना को हृदय में धारण करते हुए, वैष्णव का आश्रय स्वीकार करते हुए कृष्ण भावना में या कृष्ण भावना का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कि ये जो श्रीमद् भागवतम बहुत ही डीप है, हाँ, समंदर के भांति है, वो कहते रत्नाकर है। हाँ, जिस प्रकार से समंदर में कोई व्यक्ति जाता है और वो ऊपर से अपना जाल वगैरह डाले तो उसको मछलियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन वो जितना गहराई में जाए उतना ही वो रत्नों को प्राप्त कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम है या श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ है। तो ये जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम का, बलि महाराज और जो भगवान वामन देव का, ये बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही शक्ति संपन्न है या शिक्षाप्रद है। तो मैं सोच रहा था कि ऑलरेडी ये जो प्रसंग है अभी शायद कुछ ही श्लोकों के बाद खत्म होने वाला है, तो पूरे प्रसंग का रिवीजन करता हूँ। सबसे सरल कार्य है कि जो भी आपने सुना है उसको मैं फिर से दोहराने का प्रयास करूँगा, श्रीमद् भागवतम के इस लीला प्रसंग को, जिसका वर्णन 15वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक शुकदेव गोस्वामी करते हैं। हाँ, क्योंकि इससे पूर्व परीक्षित महाराज ने जब मोहिनी अवतार का वर्णन सुना तो उनके अंदर और लालसा हो गई भगवान के बारे में श्रवण करने की, क्योंकि वास्तव में वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में प्रवेश कर सकता है जिस व्यक्ति के पास परीक्षित महाराज की जैसी मनोवृत्ति है। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी के चरण कमलों में बैठते हैं और श्रीमद् भागवतम एकांत या एकाग्रता से या गंभीरता से श्रवण करते हैं। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी से जब वो श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि भगवान जो कृष्ण है सारे वस्तुओं के स्वामी हैं या सारे जगतों के वो उगम है, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, तो लेकिन वो सब चीजों के स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो एक निर्धन व्यक्ति के भांति तीन पग भूमि मांगने के लिए चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? बलि महाराज के पास चले जाते हैं। बल्कि ऐसे कैसे भगवान है जो इतने निर्दयी कि उनकी जो डिमांड्स थी वो पूरी की, और उसके बाद जिसने वो डिमांड्स पूरी की उसको निर्दयता से उन्होंने बांध लिया, ऐसे कैसे भगवान है? तो कहते हैं कि मैं बड़ा उत्सुक हूं, मैं ये श्रवण करना चाहता हूँ भगवान का ये जो विशेष विशेष चरित्र है। तो फिर शुकदेव गोस्वामी वो सारा जो इतिहास है, सारा जो लीला है, श्रवण करना शुरू कराते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं जब बलि महाराज युद्ध कर रहे थे और उस युद्ध में देवताओं के साथ मारे गए, और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, जिन्होंने उनको अपने सिद्धि आदि के द्वारा या अपने शक्ति के द्वारा जीवित किया, तो बलि महाराज उनके प्रति बहुत ही अधिक कृतज्ञता महसूस करने लगे। तो कृतज्ञता के कारण बलि महाराज शुक्राचार्य की शरण ग्रहण करते हैं और उनसे उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, श्रद्धा आदि के साथ उनकी आराधना करते हैं। और शुक्राचार्य ये चाह रहे थे कि मेरा ये जो शिष्य है बलि, ये थोड़ा फले फूले, इसके पास ऐश्वर्य आ जाए, जिसके कारण शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि महाराज को शुक्राचार्य विश्वजीत यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और ऐसे विश्वजीत यज्ञ को बहुत ही सरलता से वो संपन्न करते हैं बलि महाराज, और जैसे जैसे घी की आहुति देना शुरू करते हैं वैसे वैसे उस आहुति के द्वारा कई चीजें उस यज्ञ से प्रकट होने लगती हैं। हाँ, भागवतम में वर्णन आया है कि कई सारे दिव्य रथ हैं, पीले घोड़े हैं, सिम्मयुक्त ध्वजा है, धनुष है, अच्युत बाण के जो तर्कश आदि हैं, तो कई सारी चीजें उस यज्ञ से प्रकट हो गई बल्कि बलि महाराज के संरक्षण के लिए दिव्य कवच भी वहां से प्रकट हो गया। जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो प्रहलाद महाराज का आगमन होता है और प्रहलाद महाराज आनंदित हो जाते हैं और बलि महाराज ने इतने बड़े यज्ञ का संपन्न किया था, ये देखकर प्रहलाद महाराज उनको ऐसी माला पहनाते हैं जो कभी मुरझाने वाले नहीं थे। और वो माला पहनाने के बाद अलग अलग आचार्य या अलग अलग लोग बलि महाराज को कुछ ना कुछ चीजें भेंट देते हैं, जैसे उनके गुरु उनको शंख देते हैं। तो बलि महाराज अपने गुरु प्रहलाद महाराज आदि की परिक्रमा करके उन सबको प्रणाम करने के बाद निकल पड़ते हैं युद्ध करने के लिए। तो किससे युद्ध करने के लिए निकलते हैं, ये सारा जो लीला है आप सबने सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं इसको दोहराने का। तो बलि महाराज इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए निकलते हैं और उनके अमरावतीपुरी के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और अपना शंख बजाते हैं। जिस शंख की ध्वनि सुनने मात्र से जो इंद्र है वो डरने लगता है। शुकदेव गोस्वामी बहुत ही विस्तार से उस स्वर्ग का वर्णन करते हैं, इंद्र की मनस्थिति का वर्णन करते हैं। और इंद्र ने जब सुना कि इतनी भयावह शंख ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है तो इससे मेरा हृदय कांप रहा है। हाँ, तो फिर वो अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। बृहस्पति के पास जाने के बाद वो कहते हैं कि ये कहां से ये ध्वनि आई है। और दूर से इंद्र ने देखा कि वहां तो बलि जिसका अग्नि से भी अधिक या सूर्य से भी अधिक तेज निकल रहा था। तो बृहस्पति उनसे कहते हैं, हाँ इंद्र सोचते कि मैं उनको परास्त नहीं कर सकता कदापि। तो बृहस्पति उन्हें कहते हैं कि लगता है कि ये जो बलि है, हाँ अपने मुख से अग्नि निकाल रहा हो, इतना उसका तेज है जिसके द्वारा पूरे विश्व को निकालने के लिए वो तत्पर है। तो बृहस्पति उनको कहते हैं कि एक ही कारण है इसके पास बल का, शक्ति का और ऐश्वर्य का और उसके तेज का। तो क्या कारण है, वो कहते हैं कि इसने अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं हाँ उनको प्रसन्न किया है। हाँ बृहस्पति कहते हैं जानामि मघवत् क्षत्र, हाँ कि उन्होंने बलि महाराज ने अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया है जिसके कारण उनके पास पराक्रम है, यश है, तेज है, बल है और ऐश्वर्य है। तो ये सब सुनने के कारण हाँ जो इंद्र है वो बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं। तो इससे हम एक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक बल किसी को अपने जीवन में चाहिए तो वो कैसे हमें प्राप्त होता है, आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने मात्र से। तो आध्यात्मिक गुरु को यदि व्यक्ति अपने सेवा आदि से प्रसन्न करता है तो अपने जीवन में आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है। इसी कारण से उसके पास आध्यात्मिक तेज या बल से वो संपन्न हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे हमेशा, यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गति कुतोपि, कि आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने मात्र से व्यक्ति क्या करता है, भगवान की जो कृपा है वो सरलता से प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के कारण व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है जिसके द्वारा वो कृष्ण भावना सरलता से संपन्न कर सकता है, अपने बलबूते पर नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के कारण जो ये कृष्ण भक्ति है एक साधक के लिए या एक शिष्य के लिए बहुत सरल हो जाती है। इसलिए भक्तगण कहते हैं कि ये जो आंदोलन है कृष्ण भावनामृत का, ये जो आंदोलन प्रभुपाद ने शुरू किया है वो केवल एक वाक्य पर आधारित है। और वो वाक्य क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा दिया गया वाक्य है, गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य, आरना करी है मने आशा। ये वास्तव में एक वाक्य है जिसके ऊपर ये जो पूरा कृष्ण भावनामृत या पूरा आंदोलन स्थिर है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार नवद्वीप से मायापुर जा रहे थे तो बोट में वो खड़े थे बोट का इंजिन है, बड़ा आवाज कर रहा था। उसी समय एक व्यक्ति कहते कि अच्छा, आप और आपके गुरु में तो बड़ा भेद नजर आता है, बहुत अंतर है। हमें लगता है कि जैसा आप गुरु कर रहे हैं आपके, वैसे आप नहीं कर रहे हो, आप अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते ऐसा नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि देखो, ये जो इंजन है बड़ा आवाज कर रहा है, लेकिन इसका जो बैटरी है वो नीचे है। तो उसी प्रकार से मेरे आध्यात्मिक गुरु एक बैटरी के भांति है, और ऊपर से मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत लाउड हूं, मैं बहुत आवाज कर रहा हूं। तो कहते हैं कि ये सारे जो शक्ति मेरे कार्यों की है, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के द्वारा मुझे प्राप्त है, और जिसके कारण मैं ये सारा कार्य कर पा रहा हूं। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु की कृपा के कारण, शक्ति के कारण, एक छोटे से छोटा व्यक्ति अब बहुत बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। एक बार तीन चूहे एक पिंजरे में बंद हो गए थे। अभी तीन चूहे बंद हो गए तो हर एक चूहा अपने आप को बड़ा घोषित करने के लिए, स्थापित करने के लिए तत्पर था। जैसे भक्त भी आपस में मिलते हैं तो हर एक व्यक्ति तत्पर रहता है अपनी अचीवमेंट को बताने के लिए। तो उसमें से एक जो चूहा था वो कहता, ये जो पिंजड़ा है, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं कि ये जो मनुष्य है, इन्होंने ये जो विष हमारे लिए रखा होगा मारने के लिए, तो बहुत ही नगण्य है। मैं तो एक पकौड़े में 500 ग्राम या एक किलो विष था, उसको खाकर मैंने डाइजेस्ट किया है। तो ये थोड़ा सा जो जहर हमें मारने के लिए रखा है, इसके लिए इसकी क्या मिसाल है। दूसरा कहता, इतना ही नहीं, मेरे जो दांत हैं वो बहुत पावरफुल है। ये जो पिंजरा जिसमें हम बंद हैं, उसको मैं अपने दांतों के द्वारा पाउडर कर सकता हूँ, चूर्ण बनाकर उसको अलग कर सकता हूँ। तो तीसरा कहते, ठीक है, तुम जहर पी सकते हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तुम पिंजरे का पूरा चूर्ण बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, लेकिन मुझे देखो कितनी शक्ति है मुझ में। क्या शक्ति है, अभी बाहर निकलता हूं, वो जो बिल्ली देख रहे हो ना सामने, उसके पास जाता और उसको चैलेंज देकर यहां वापस आ जाता हूं। तो उसी प्रकार से डिवोटीज हैं। हम बिल्ली की तुलना भक्तगण करते माया से, वो आध्यात्मिक गुरु से इतने शक्ति संपन्न होते हैं कि वो माया को जाकर चैलेंज करके वापस आ जाते हैं। प्रभुपाद के डिसाइपल्स को देखो, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, जैसे मर्जी हो, 6 महीने ज्वाइन नहीं किया हो तो अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने क्या किया, वास्तव में माया को चैलेंज किया है, और वहां जाकर मंदिरों का निर्माण किया है, नाम संकीर्तन किया है, भक्तों को बनाया है। ये क्यों संभव हो सका, आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने मात्र से, जिनके कारण वो भक्त इतने शक्ति संपन्न हो गए कि उन्होंने ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया। इतने शक्ति संपन्न हुए हैं। प्रभुपाद को देखो, वृद्धावस्था में हम देखते हैं क्या शरीर में शक्ति है। मानसिक रूप से भी व्यक्ति बहुत ही वीक हो जाता है, शारीरिक रूप से भी होता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने मात्र से श्रील प्रभुपाद इतने दूरवर्ती देशों में जाकर लोगों को कृष्ण भावना प्रदान कर सकते हैं। इसी यही कारण है सफलता प्राप्त करने का। इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, कि कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करने मात्र से, या चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण व्यक्ति जो दुष्कर कार्य है उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। और यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है तो जो सरल कार्य है वो भी बहुत कठिन महसूस होता है। तो इस प्रकार से आचार्यगण कहते हैं कि वास्तव में ये पहला लेसन है बलि महाराज के इस प्रसंग से, कि उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया, जिनके कारण वो क्या उनके पास प्राप्त हुआ, एक बल, आध्यात्मिक बल उन्हें प्राप्त हो गया था। तो इसलिए बृहस्पति ने कहा, अभी ये बलि कोई साधारण नहीं है, ब्रह्म तेज से युक्त है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उसे जीत नहीं सकता। इसलिए हे इंद्र और देवताओं आप क्या करो, वो कहने लगे कि आप इस स्वर्ग को छोड़ के चले जाओ और जहां भी स्थान मिलता है वहां जाकर छुप जाओ। तो सारे जो देवतागण हैं, इंद्र ने सोचा मेरे पद का क्या होगा, इंद्र को सबसे ज्यादा किसी की चिंता है तो अपने चेयर की चिंता है, कुर्सी की चिंता है। हाँ, तो वो कहते हैं कि मेरे पोजीशन का क्या होगा, हाँ मुझे फिर गुफाओं में कंदराओं में जाकर छुपना पड़ेगा, तो कोई उपाय है जिसके द्वारा फिर से मैं अपना राज्य प्राप्त कर सकता हूं या इंद्रपद प्राप्त कर सकता हूं। तो बृहस्पति कहते हैं कि हाँ एक कार्य जब होगा तब वापस तुम अपना इंद्रपद प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि जो ये बलि है जो अपने गुरु के द्वारा शक्ति प्रदत्त है लेकिन समय के साथ काल बहुत प्रभावशाली है, समय बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा तेषामेव अपमानेन सानुबंधो विनक्षति, कि ये अभी जिनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है और इतना शक्ति संपन्न हुआ है, जब उनके प्रति अपराध करेगा, उनका अनादर करेगा, उनकी अवज्ञा करेगा, सानुबंधो विनक्षति, अपने सहायक बंधुगण सबके साथ ये जो बलि है ये एक दिन क्या हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तो भक्तगण आचार्यगण कहते हैं दूसरी शिक्षा है कि व्यक्ति जब आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करता है तो जैसे ही वो अपराध कर बैठता है जिसके कारण अपना सारा जो शक्ति है वो खो देता है, हाँ इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये वास्तव में नाम अपराध है आध्यात्मिक गुरु के प्रति उनकी अवज्ञा आदि करना। हाँ, जब हम अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव आदि का, जिनके जिसके कारण ये जो कृष्ण भावना के बहुत ही सिंपल सिंपल कार्य भी हमारे लिए क्या बन जाते हैं, बहुत कठिन हो जाते हैं। और विशेष रूप से क्या कठिन बन जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्योंकि जब वैष्णव का अनादर करते हैं, अपराध की भावना रखते हैं या अपराध कर बैठते हैं गुरु और वैष्णव के प्रति, उसी क्षण हरिनाम करना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है, मानो हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ हो। इसलिए शास्त्रों में हजारों हजारों उदाहरण आते हैं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु तो एक जगह कहते हैं शूल पानी समझ अदि, हाँ कहते हैं कि ये शूल पानी जो अपने हाथों में त्रिशूल धारण करने वाले शिवजी हैं, उनके समान व्यक्ति भी यदि वैष्णवों की निंदा करता है तो कहते सारे शास्त्र लाउडली बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी नाश प्राप्त करता है या विनष्ट हो जाता है, तो फिर सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए क्या है। तो इसलिए व्यक्ति सारे आध्यात्मिक शक्ति या बल तेज आदि को खो बैठता है जब वो भक्तों के प्रति या गुरु के प्रति अपराध या अनादर का भाव रखता है। क्यों अनादर का भाव है, क्योंकि हमारे हृदय में स्वार्थ से प्रेरित कई सारी कामनाएं हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, गुरु और वैष्णव के प्रति अनादर का भाव रखते हैं। तो बृहस्पति की बात इंद्र आदि ने मान ली और वो सारे देवतागण अनेक अनेक रूपों को धारण करके अपने स्थानों को छोड़ देते हैं, स्वर्ग आदि को, और अलग अलग स्थानों में छुप जाते हैं। तो ये जो विरोचन पुत्र है बलि, तीनों लोकों पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित कर लेते हैं, और फिर उनके जो गुरु है शुक्राचार्य उन्हें सौ अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए उनको प्रवृत्त करते हैं। क्यों, क्योंकि देवतागण अपने इंद्र के रूप में उनको स्वीकार कर सकते हैं सरलता से, और साथ ही साथ पूरे त्रिभुवन में उनकी जो कीर्ति है वो फैल सकती है, इस कारण से उन्हें सब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उनके जो गुरु हैं वो प्रवृत्त करते हैं। तो ये जब हो रहा था, देवताओं ने सारा जो स्वर्ग आदि है उसको छोड़ दिया, तो सबसे अधिक दुख किसे हुआ था, वो अदिति को हुआ था, क्योंकि अदिति के सारे पुत्र हैं देवतागण जो सारा ऐश्वर्य और स्वर्ग लोग छोड़कर चले गए थे। तो आदिति बहुत विलाप करने लगे, उन्होंने सोचा मेरे आंखों के सामने मेरे जो पुत्र हैं वो इतना कष्ट अनुभव कर रहे हैं या कष्ट पा रहे हैं, तो जोर जोर से रोदन करती है। और उसके बाद वो कश्यप मुनि जब तपस्या आदि करके वापस आते हैं तो कश्यप मुनि से याचना करती है कि आप कुछ कीजिए जिसके द्वारा मेरे जो पुत्र हैं देवतागण हैं उनका जो राज्य है उन्हें वापस प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा से मैंने कुछ सीखा था, तो आप सबने सुना होगा पयोव्रत का जो विधान उनको प्रदान करते हैं जो कश्यप मुनि है, और जिसका पालन करने मात्र से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वो व्रत ग्रहण करने मात्र से उन्हें भगवान अपने पुत्र रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और कौन से भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं? भगवान वामन देव हाँ प्रकट हो जाते हैं उनके लिए। जैसे वामन देव प्रकट हो जाते हैं हाँ श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, उनके अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग देवतागण उनको अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। जो सूर्यदेव है उनसे गायत्री करवाते हैं, बृहस्पति जनेऊ प्रदान करते हैं, और जो ब्रह्मा है उनको कमंडलू देते हैं, कुबेर उनको भिक्षा पात्र देते हैं, और उनको सरस्वती रुद्राक्ष आदि देती हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी तेज से युक्त होकर वामन देव हाँ अपना कार्य करने के लिए निकलते हैं। किसके हित के लिए कार्य करने के लिए निकलते हैं? इंद्र के हित के लिए, उनके भाई बनकर प्रकट हो गए थे। तो वो जो स्थान है वो छोड़कर निकलते हैं उस स्थान पर जहां बलि महाराज नर्मदा के तट पर हाँ यज्ञ करने के लिए बैठे थे सब अश्वमेध यज्ञ। और वह जो भृगु कच्छ स्थान है उस स्थान को कहा जाता है, आज भी है नर्मदा के तट पर। तो भगवान जैसे जैसे चलने लगे उस स्थान की ओर, श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो पृथ्वी है उनके चरणों के कारण धसने लगे। और फिर भगवान उस स्थान में पहुंचते हैं, बल्कि पहुंचने से पूर्व एक विशेष घटना घटित होती है। श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य है वेदांत देशिक, वो अपने ग्रंथ यादव अभ्युदय में इसका वर्णन करते हैं कि ये भगवान वामन देव जब निकल रहे थे वहां बलि महाराज के पास उनका सारा ऐश्वर्य आदि छीनने के लिए, तो उस समय वो सोचने लगे कि मैं एक याचक के भांति जा रहा हूं, भिखारी के भांति जा रहा हूं, लेकिन मैं कौन हूं? भगवान हूं, विष्णु हूं, और मेरे वक्षस्थल में लक्ष्मी सदा निवास करती है। तो यदि मैं उनसे कुछ मांगूंगा, बलि महाराज के सामने खड़े होकर उनसे याचना करूंगा, उनका सब कुछ छीन लूंगा, तो ये संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उनके ऊपर सदैव किसकी दृष्टि होगी? लक्ष्मी की दृष्टि होगी, क्योंकि लक्ष्मी मेरे तो यहाँ वक्षस्थल में निवास कर रही है, और वो तो जब मैं मांगते समय वो देखेगी तो उनका ऐश्वर्य में छीन नहीं सकता। तो भगवान चलते चलते सोच रहे थे, उन्होंने मृग चर्म धारण किया हुआ था हाँ, जैसे पुजारी डालते हैं, तो उन्होंने सोचा कुछ करना पड़ेगा, इस लक्ष्मी को ढकना पड़ेगा, इसकी आंखें क्या करनी पड़ेगी? मुझे बंद करने पड़ेगी। तो कैसे बंद करेंगे? तो जनरली जो पुजारी है हम देखते हैं कि यहाँ इस तरफ से हम इस तरफ उत्तरिया डालते हैं और जो जने हो उसको ढक देते हैं, लेकिन भगवान के इस साइड में राइट का जो साइड है यहाँ लक्ष्मी का निवास है। तो जब पुजारी वस्त्र डालता है इस प्रकार से उत्तरिया डालता है तो ये स्थान खुला रहता है। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी तो खुली है इस स्थान में। तो भगवान सोचते कि अभी क्या करो, इसको ढका जाए, तो भगवान अपना उत्तरिया वस्त्र चेंज करते हैं। वो आचार्य कहते हैं कि वो उतार कर फिर इस तरफ डालते हैं, जैसे डालते हैं तो लक्ष्मी का जो मुख है वो बंद हो जाता है। तो लक्ष्मी सोचने लगती है कि मैंने भगवान को इतना एडजस्टमेंट करते हुए कभी देखा नहीं, कौन सा बंदा है, कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए भगवान वामन देव के रूप में आए हैं, चलते चलते इतना एडजस्टमेंट करते हुए पहुंच रहे हैं। तो लक्ष्मी का जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत बढ़ गया, बल्कि लक्ष्मी सोची जिसके लिए एडजस्टमेंट करते हुए निकले हैं उनको मैं निश्चित रूप से देखूंगी अपने आंखों से। तो वर्णन आता है कि फिर भगवान जब पहुंचते हैं वहां तो बलि महाराज उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और बलि महाराज उनको एक आसन वगैरह देते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवाम में, वो कहते कि हे ब्राह्मण मैं आपका स्वागत करता और बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो बलि महाराज जैसे उनकी याचना करते हैं कि आप तो यहाँ आए हो हमारे कुल को शुद्ध करने के लिए, वंश को पवित्र करने के लिए, तो उनका पाद प्रक्षालन आदि करते हैं और कहते हैं कि बताइए महान यज्ञ में कर रहा हूं आपको मैं क्या प्रदान करूं, क्या दक्षिणा दूं, क्या दान दूं, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। आपको गाय चाहिए दूध पीने की भावना है, सोने के लिए कुछ चाहिए बेड आदि वो मैं प्रदान कर सकता हूं, यदि आप बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं तो कुछ पेय चीजों की आवश्यकता है तो वह मैं आपको प्रदान करता हूं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि महाराज ने कई सारी ऐसी लंबी लिस्ट बताई भगवान को कि कहा कि आपको हाथी घोड़े रथ आदि चाहिए तो बताइए। तो इस प्रकार से भगवान वामन देव को वो कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छा है वो आप मुझसे मांग सकते हो। तो भगवान वामन देव उनकी इस भावना से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप बहुत महान वंश में प्रकट हुए हो, जिस वंश में प्रहलाद जैसे महान भक्त प्रकट हो गए थे, और आप जैसा व्यक्ति एक बार वचन देगा तो उस वचन से फिर अलग नहीं होगा, उसकी पूर्ति करेगा और उसको निभाने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो भगवान वास्तव में उनको बांध रहे थे, धीरे धीरे बांध रहे थे, भगवान उनकी प्रशंसा करने जा रहे थे। प्रशंसा करते करते भगवान ने कहा कि मुझे तो तीन पग भूमि चाहिए, आप वो मुझे प्रदान कीजिए। और फिर भगवान जैसे उनको ये याचना करते हैं एक याचक के भांति, तो उनसे कहते हैं कि वास्तव में आप तो मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं तो ये जो अलग अलग द्वीप है उसमें से एक द्वीप प्रदान करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन आप तो मुझसे केवल तीन पग भूमि मांग रहे हो। हे ब्राह्मण आप कुछ और मांगो। तो भगवान वहां उपदेश देते हैं कि वास्तव में एक जो ब्राह्मण है, याचक है, साधक है, अपने आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है तो वो आध्यात्मिक तेज आध्यात्मिक बल को क्या करता है, खो देता है। तो इसलिए जो ब्राह्मण है साधक है जो संतुष्ट होता है जो भी उसके पास चीजें हैं उससे वो आध्यात्मिक जो अभ्यास है वो उचित रूप से कर सकता है। तो ऐसी कई सारी शिक्षाएं उस श्लोकों में प्राप्त होती हैं जिनको आपने पिछले श्लोकों में सुना होगा। तो भगवान उनसे यही याचना करते हैं और जब वो तत्पर हो जाते हैं देने के लिए, अपने हाथों में जल उठाते हैं, तुलसी लेते हैं और भगवान की कोई चीज दान देनी होती है तो शास्त्रों में विधान है कि उस व्यक्ति के हाथ में जल देना चाहिए, तुलसी का पत्र अर्पित करना चाहिए। तो उस प्रकार से ये जो विधान पूर्ति कर रहे थे बलि महाराज, तो उसी समय सबसे बड़ी चिंता करने वाले उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे तुम्हें तो धोखा दिया जा रहा है। हाँ, ये जिसको तुम एक साधारण ब्राह्मण सोच रहे हो वो ब्राह्मण नहीं है, वो साक्षात कौन है, भगवान विष्णु है जो एक बालक के रूप में तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हारा सर्वस्व छीनने के लिए आए हैं। हाँ, तो बलि महाराज नाराज नहीं होते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं भगवान विष्णु को अपने कार्यों के द्वारा, अपने ऐश्वर्य, अपने सुविधाओं के द्वारा, संपन्नता के द्वारा प्रसन्न कर पाऊं। तो ऐसे बलि महाराज तत्पर हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं तीन पग आप मैं भूमि आपको प्रदान करने के लिए तैयार हूं। तो हमने सुना पिछले कई सारे श्लोकों में कि भगवान तीन पग भूमि उनको प्रदान करते हैं। हाँ, एक 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 तो भगवान पूरे भूतल को लेते हैं या पद अपने पद से, और दूसरा भगवान सारे त्रिभुवन को दूसरे पग से ग्रहण करते हैं। और जब तीसरा पद बाकी था तो कहते हैं कि हे बलि बताओ कि अभी मैं तीसरा पद कहाँ डालूं। तो बलि महाराज जब ये दोनों पद से उनका सारा ऐश्वर्य सब चीजों को छीन लिया था, फिर भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि इसको वरुण पाश के द्वारा बांध डालो और घसीट के ले आओ। तो वास्तव में उस समय इतना अपमान करते हैं भगवान उनका, उनके संबंधियों के सामने, पारिवारिक जनों के सामने, सारे आसुरों के सामने, देवताओं के सामने इतना उनका अपमानित किया जाता है बलि महाराज को। लेकिन बलि महाराज उससे दुखी नहीं होते, बलि महाराज अपना सौभाग्य समझते हैं कि कृष्ण मुझे दंडित कर रहे हैं। और तीसरी चीज के लिए वो सोचते हैं कि कौन सा मैं स्थान प्रदान करो। तो बलि महाराज क्या करते हैं कि बलि महाराज कहते कि आप अपना जो तीसरा पद है वो मेरे सर में रखिए। तो आचार्यगण कहते कि क्यों अपना सर उन्होंने प्रदान किया भगवान के चरण कमलों के पास। कहते कि जो अहम का भाव है उसका निवास स्थान कहाँ है, अपने सर में है। तो हम सब चीजें छोड़ने के लिए तत्पर हैं, लेकिन जो अहम का भावना है वो कदापि नहीं छोड़ते, हाँ इवन भगवत भक्ति में आने के बाद भी। तो वो कहते हैं कि भगवान मैं ये जो मेरा अहम भाव है वो आपको समर्पित कर रहा हूं, और इसको ही आत्मसमर्पण कहा है। जिसके कारण भगवान के सामने अपना वो सर झुकाते हैं और भगवान अपना जो तीसरा पद है उनके सर पर रखते हैं, जिसके द्वारा भगवान वास्तव में उनके प्रति ऋणी हो जाते हैं। भगवान उनके आत्मसमर्पण के कारण, उनके भक्ति के कारण बंद जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि हे बलि महाराज, तुम्हें मैं सूतल लोक प्रदान कर रहा हूं, और जिसके कारण मैं वहां भी तुम्हें संरक्षण प्रदान करूंगा। और सूतल लोक इतना ऐश्वर्य से संपन्न है, प्रभुपाद कहते हैं कि स्वर्ग से भी अधिक संपन्न है, वहां जाकर तुम निवास करो और मैं तुम्हारा स्वयं संरक्षण पर प्रदान करूंगा। तो भगवान सूतल लोक उन्हें प्रदान करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान स्वयं ही एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर सूतल लोक में इनके महल के बाहर सदैव खड़े हैं। तो कई 36,000 साल तक, तो जब ये लक्ष्मी देवी अपने आध्यात्मिक जगत में सोचती है कि ये भगवान वामन देव बनकर गए, अपनी लीलाओं को उन्होंने अलग अलग लीलाओं को प्रकट किया, लेकिन अभी तक ये वापस नहीं आए हैं बलि महाराज को दंडित करने के बाद। तो एक बार लक्ष्मी देवी सूतल लोक जाती हैं, और सूतल लोक जाकर क्या देखती है, उनसे वो हाल, भगवान का जो हाल बेहाल है वो देखा नहीं जाता। जब लक्ष्मी देवी सूतल लोक पहुंची तो बलि महाराज उनकी सेवा पूजा, उनकी आराधना करने के लिए आ जाते हैं, उनको एक आसन प्रदान करके उनकी आराधना करते हैं। तो उस समय वो जो लक्ष्मी देवी है आज्ञा के भावना में नहीं बोलती एक चीज, वो एक निवेदन की भावना में भगवान बलि से याचना करती हैं। वो कहती कि बलि मुझे मेरे पति का कष्ट देखा नहीं जाता। कौन सी पत्नी है जो अपने आंखों के सामने पति का कष्ट देखने के लिए तत्पर हो। तो बल्कि क्या कष्ट था भगवान का, क्योंकि उनके महल को तो 4 या 5 से अधिक दरवाजे थे, भगवान सिक्योरिटी गार्ड बन के एक दरवाजे में खड़े नहीं थे। वो कभी भी किसी भी गेट से बलि बाहर आएंगे, इसलिए भगवान इस गेट से उस गेट में दौड़ा करते थे, अरे बलि उस गेट से आएंगे, उस गेट से आएंगे। तो पूरे दिन पसीने पसीने छूटते रहते थे भगवान के, और ये किनसे नहीं देखा जाता था, आचार्यगण कहते हैं लक्ष्मी देवी से नहीं देखा जाता था। जिसके कारण वो कहते बलि तुमसे एक ही याचना करते हो, निवेदन करते हो, कृपा करके जब बाहर निकलोगे तो एक ही गेट से निकलो, हाँ कोई एक गेट फिक्स करो। जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हाँ बल्कि 4 गेट हैं, लेकिन जगन्नाथ को बाहर निकलना होता है तो कौन से गेट से आते हैं, सिंह द्वार से आते हैं। तो उसी प्रकार से लक्ष्मी कहती है कि ये मेरी याचना है, आप क्या करो, एक ही गेट से बाहर आओ। तो सोचो बलि महाराज जो आत्मसमर्पण के आचार्य हैं, बल्कि इनके वंश में दो महाजन हैं, कितना बड़ा वंश है। एक तो प्रहलाद महाराज भी स्वयं महाजन आए और उनके पद का अनुसरण करके, बल्कि प्रभुपाद एक तात्पर्य में पिछले श्लोकों में कहते हैं कि जैसे वामन देव आए उनके यज्ञ में, उनके चरण प्रक्षालन करने के लिए जैसे ही बलि महाराज बैठे, उसी क्षण उनको शिवजी का स्मरण वो आया। वो सोचने लगी, अरे यही तो चरण कमल है जिनसे जल निकलता है, और शिवजी कहां धारण करते हैं, अपने सर में धारण करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये वास्तव में सोचने मात्र से उन्होंने महाजनो ये न गतास पंथा, महाजन के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। बलि महाराज ने, शिवजी भी एक महाजन है, हाँ स्वयं भू नारद शंभु, तो उनके चरणों का अनुगमन किया, जिसके कारण प्रभुपाद कहते हैं ये बलि भी आगे चलकर क्या बने, महाजन बने। तो प्रभुपाद ने कहा ये 12 महाजन है। तो किसी प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद के किसी एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद आप तो 13वें हो, प्रभुपाद व्यासन गए थे तुम तो 14वें हो। तो प्रभुपाद कहते ये जो महाजनों की परंपरा है ये कभी खंडित नहीं होनी चाहिए, ये परंपरा क्या है, चलती रहने चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान यहां उनके प्रति आत्मसमर्पण करते हैं, बलि महाराज आत्मसमर्पण करते हैं, जिनके कारण भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लीला है, समय तो खत्म हुआ, ये जो लीला है मैंने सोचा इसको रिवाइव करता हूँ, जिसके द्वारा जो बलि महाराज हैं भगवान को अपने वश में करते हैं। तो आज एक और भी फेस्टिवल है, एक महान आचार्य चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद वक्रेश्वर पंडित का क्या है, आविर्भाव है। बल्कि ये जो सारे वैष्णवा फेस्टिवल है, ये वैसे देखा जाए तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की देन है। उन्हें जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिले तो उनको कहा, तुम तो इतने बड़े स्कॉलर हो, हाँ इतने बड़े विद्वान हो, तुम क्या करो, वैष्णव पंजिका का निर्माण करो। तो उनके आदेशों पर ये जो वैष्णव कैलेंडर है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कंपाइल किया, और उसमें सारे उत्सव आविर्भाव तिरुभाव सारे उत्सवों को रखा। और ये सारे उत्सव आते हैं हमें उत्साह प्रदान करने के लिए, क्योंकि हम अनुत्साहित रहते हैं प्रतिदिन। तो ऐसे ही वक्रेश्वर पंडित है जिनका आविर्भाव है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही भक्तों के लिए आनंददायी है। बल्कि चाहे तिरुभाव कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग दुख प्रकट करते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर ने जब देह त्याग किया, चैतन्य महाप्रभु ने विजय उत्सव मनाया। कृष्णदास कविराज कहते हैं वो साधारण उत्सव नहीं था, वो विजय उत्सव है। उसी प्रकार से एक वैष्णव अवतरित होता है, अपीयर होता है इस भौतिक जगत में, तो सर्वाधिक आनंद की अनुभूति किसे होती है, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं पृथ्वी देवी को। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, ठाकुर वैष्णव पद ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद, कि ये जो वैष्णव ठाकुर है वो पृथ्वी की एकमात्र संपदा है, पृथ्वी के वो एकमात्र रत्न है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं हाँ वक्रेश्वर पंडित। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं वक्रेश्वर पंडित वास्तव में हाँ नृत्य शक्ति का आवेश उनमें था। हाँ किसी को नृत्य करने का बहुत भावना रखना है तो उनको वक्रेश्वर पंडित का अनुगमन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये वक्रेश्वर पंडित बहुत विशेष भक्त है। बल्कि कृष्णदास कविराज शुरुआत में आदि लीला में कहते हैं, वक्रेश्वर पंडित प्रभुर पड़ भृत्य एक बावे छब्बीस प्रहर जार नृत्य, कि महाप्रभु के कई सारे भक्तों में वक्रेश्वर पंडित बहुत बड़े भक्त हुए हैं, जिन्होंने 26 प्रहर मीन्स 72 घंटे नृत्य किया था। और वो कहते थे जब वो नाचते थे तो चैतन्य महाप्रभु को गाना पड़ता था, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गाते थे वो दो चैतन्य महाप्रभु जब नाचना होता था तो महाप्रभु दो भक्तों को कहते थे आप गाओ, नवद्वीप में कौन थे, मुकुंद थे, और जब जगन्नाथपुरी गए तो वहां स्वरूप दामोदर गाया करते थे। उसी प्रकार वक्रेश्वर पंडित जब नाचते थे तो महाप्रभु गाने लगते थे, आपने महाप्रभु गान जार नृत्य काले, प्रभु चरण धरे वक्रेश्वर बोले। तो कहते हैं कि महाप्रभु गाया करते थे और एक बार चैतन्य महाप्रभु के चरण वक्रेश्वर पंडित ने पकड़े और क्या बोला उन्होंने, दश सहस्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमोक, तारा गाय मुई नाचो तबे मोर सुख। उन्होंने कहा हे श्री चैतन्य देव, हे कमल मुख वाले कृष्ण या चैतन्य देव, आप क्या कीजिए, मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए, वो गाते रहे और मैं क्या करता रहो, नाचता रहो। प्रभु बोले तुम्ही मोर एक पाखा, आकाशे उड़े ताम जदे पाउ आर पाखा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनका ये वक्तव्य सुना तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो आकाश में उड़ना चाहता हूं, हे वक्रेश्वर पंडित, तुम मेरे पंख हो, और भी तुम्हारे जैसा कोई ऐसा महान भक्त मुझे मिलता है, वो मेरा एक और पंख बनता है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, आकाश में उड़ पाऊंगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनसे कहा करते थे। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब भी वक्रेश्वर पंडित को देखते हैं, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि महाप्रभु जब वक्रेश्वर पंडित को देखते हैं कि ये इतना नाम संकीर्तन का आस्वादन कर रहा है अपने नृत्य आदि के माध्यम से, महाप्रभु कहते हैं कि ये जो आस्वादन कर रहा है, मैं यही आस्वादन, उनको दया उमड़ पड़ती थी देवताओं के प्रति, वो कहते देवता बेचारे कितने दुर्भाग्यशाली हैं, मैं तो ये वक्रेश्वर को लेकर वहां जाने की कामना करता हूं स्वर्ग में, और वहां जाकर भी ये नाम संकीर्तन का जो सुख है या जो आनंद है वो उनको प्रदान करना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ये भावना रखते थे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो वक्रेश्वर पंडित है, विशेष आचार्य है, चैतन्य महाप्रभु के संग में सेवा सांगन में जितने भी कीर्तन हुए हैं उसमें उनकी उपस्थिति थी। चंद्रशेखर आचार्य जो व्रजपट्टन स्थान है वहां भी उनकी उपस्थिति थी, और चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए उसके उपरांत जगन्नाथपुरी गए तो वहां भी वक्रेश्वर पंडित गए और उनके साथ ही रहे। वक्रेश्वर पंडित गंभीरा में ही काशी मिश्र का जो आलय है, काशी मिश्र का जो घर है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे, उसी में ही वक्रेश्वर पंडित भी निवास करते थे। बल्कि रथ यात्रा के सामने जो 7 अलग अलग पार्टी या दल चैतन्य महाप्रभु बनाते थे उनमें से एक दल में इनको नियुक्त करते थे नृत्य करने के लिए, प्रमुख नृत्य करने वाले जो डिवोटी हैं। तो ऐसे वक्रेश्वर पंडित हैं जिनकी सेवा करने मात्र से जो देवानंद पंडित हैं उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुए थे। हम जानते हैं देवानंद पंडित तो भागवत पढ़ते थे, पढ़ाते थे, इतने बड़े आचार्य थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पास भागवत सीखने के लिए आते थे। श्रीवास ठाकुर एक बार भागवतम के कुछ श्लोकों को सुनने मात्र से भगवत भावावेश में आकर वहां गिर पड़े और कुछ भाव के विकारों के कारण कुछ बड़बड़ाने लगे या चिल्लाने लगे, तो देवानंद पंडित के सामने उनके शिष्यों ने उनको उठाकर एक कोने में फेंक दिया, श्रीवास ठाकुर को। चैतन्य महाप्रभु ने इसको एक महान अपराध के रूप में स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला, कहता है वो देवानंद, वो क्या भागवत पढ़ेगा, क्या भागवत को पढ़ाएगा, भागवत को तो ये क्या प्रदान कर सकता है, जो भक्त भागवत के प्रति व्यवहार आचरण आदि को ये सीख नहीं पा रहा है, तो भागवतम में ये और इसके जो शिष्य है कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना को बहुत बड़ा भागवत तत्व की व्याख्या की है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही अधिक गुस्से में थे, क्रोध में थे, नाराज थे देवानंद पंडित के द्वारा, देवानंद पंडित के प्रति जिन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। लेकिन फिर जब हाँ उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की एक बार सेवा की, क्या सेवा की, वक्रेश्वर पंडित जब कुलिया ग्राम में आए थे एक भक्त के घर में और वहां कई घंटे नृत्य करने लगे संध्या के समय में, पहले तो अकेले ही नाच रहे थे तो वहां कई लोग इकट्ठा होने लगे और उसी स्थान में ये भी पहुंचे हाँ जो देवानंद पंडित है, वक्रेश्वर पंडित जहां नाच रहे थे वहां देवानंद पंडित पहुंचे और वहां उन्होंने देखा तो नाच रहे हैं और बहुत भीड़ इकट्ठा हो रहे थे। उन भीड़ को साइड में रखने के लिए उन्होंने अपने हाथ में देवानंद पंडित ने एक बेत लिया, एक क्या कहेंगे छड़ी ले ली हाँ सबको रोकने के लिए, हर उनको नाचने के लिए स्थान प्रदान किया हाँ उनकी देखभाल की। और इतना करने मात्र से हाँ जब उनका कीर्तन मध्य रात्रि में खत्म हो गया तो वक्रेश्वर पंडित एक स्थान में बैठते हैं, बैठकर केवल देवानंद पंडित उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए थे वक्रेश्वर पंडित, उन्होंने कहा कि हे देवानंद कृष्ण भक्ति हो, तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए। इतना कहने मात्र से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो देवानंद पंडित अनुकूल करते हैं। और आगे चलकर हम सुनते हैं कुलिया ग्राम में जब चैतन्य महाप्रभु का सेकंड यात्रा था, वृंदावन जाने के लिए अपनी माता और गंगा का दर्शन करते हुए वो जा रहे थे रामकेली की ओर, उस समय कुलिया में उन्होंने निवास किया और देवानंद पंडित को अपनी जो कृपा है वो उन्होंने प्रदान की। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने तब उनसे बोला था, प्रभु बोले तुम्हें जैसे मिला वक्रेश्वर अतएव हैला तुम्हें अमार गोचर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था तुमने जो वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है जिसके कारण तुम मेरी जो कृपा है प्राप्त कर पा रहे हो। हाँ तो वक्रेश्वर पंडित का बहुत अधिक गुणगान करते हैं और कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये जो वक्रेश्वर पंडित है हाँ चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध है और साथ ही साथ शशि रेखा नामक सखी भी है कृष्ण लीला में। तो इस वक्रेश्वर पंडित के आख्यान का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से वृंदावन दास ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में करते हैं और उसका समापन करते हुए वो कहते हैं, सिद्धिर भवति वानेति संशयो चित सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचरितात्मनाम। वो कहते हैं कि सिद्धिर भवति वानेति, व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है या नहीं भगवान के भक्तों की, डायरेक्ट भगवान की सेवा करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं उसमें बहुत शंका है। लेकिन वो कहते अच्युत सेविना, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में लगा है उसको जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होना निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं है। इस बात से वो स्थापित करते हैं कि देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की जो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय थे, जिसके कारण हम वो चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित वो महान आचार्य है जिनको चैतन्य महाप्रभु अपना एक पंख मानते थे और सदैव उनके आनंद के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, कृष्ण कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के समवेद गौर भक्त वृंद की निताय।